ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سار اللہ وابن سارح والوتر المعتور. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. عزاداران امام اہل بیت چینل لندن سے میری چار محرم کی مجلس فورتھ آف محرم مسلسل تین دن سے آپ سے معروضے کر رہا اور اب چوتھی منزل پر آ گئے. یہ وہ کلمات کہ جو زیارت وارثہ اور زیارت عاشورا میں ہے. یہ ایک عہد ہے, یہ ایک پرومس ہے, یہ ایک وعدہ ہے مولا حسین سے. یہ ایام مولا حسین کے ایام ہیں اور ہم زیارت پڑھتے. زیارت کے لیے یہ کہا گیا. کل میں نے زیارت وارثہ کے بارے میں کچھ کہا تھا, آج زیارت ہی کے بارے میں کچھ اور بھی بولوں کہ چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چاہنے والے کو عبداللہ کو بلایا. جب وہ ملنے آیا گفتگو کے دوران امام نے کہا کہ کیا تم میرے جد حسین ابن علی کی زیارت کو جاتے ہو؟ تو اس نے کہا مولا جاتا ہوں. امام نے کہا کیا روز جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا روز تو پاسبل نہیں. کہا ہفتے میں؟ کہا وہ بھی پاسبل نہیں. مہینے میں؟ کہا وہ بھی پاسبل نہیں. ایک سال میں؟ اس نے کہا ہاں کوشش کرتا ہوں ایک سال میں مولا حسین کی زیارت کو جاؤں. امام نے کہا تو روز کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مولا پلیز غور سے سنو, پہلا تحفہ ہے. کہا مولا کیسے جا سکوں گا؟ میرے لیے پاسبل نہیں, میں کربلا مولا سے کافی دور رہتا ہوں. یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو امام نے کہا ٹھیک ہے تو روز نہیں جا سکتا, لیکن روز اپنے گھر میں بلندی پہ جا کے زیر سما جا کے. ٹھیک ہے آپ لندن میں رہتے زیر سما نہیں کر سکتے, روزانہ کربلا کا رخ کر کے آسمان کی طرف دیکھ, سیدھی طرف دیکھ, بائیں طرف دیکھ اور سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہو. بس ادھر سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کا ایک دفعہ سلام کرو. ایک دفعہ میں مثال دے رہا ہوں, آپ دس دفعہ کریں, بیس دفعہ کریں, اٹھارہ مرتبہ کریں. کہا کہ ایک دفعہ سلام کر, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کا. اللہ وہ اجر دے گا جیسے تو نے قبر حسین کے سامنے کھڑے رہ کے مولا حسین کو سلام کیا. دوستو اس سے اچھی بات یا اس سے بڑی بات, اس سے آسان بات اور کیا ہوگی؟ یو وانٹ ٹو چینج یور لائف, ڈو یو وانٹ ٹو چینج یور لائف, یو کین چینج اٹ. صبح اٹھنے کے بعد یا گھر سے نکلنے کے وقت صرف یہ پڑھ کے نکل, ایک ہی سلام, سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. چوبیس گھنٹے پڑھتے رہو. ایام عزا ہے, دور عزا ہے, اشے محرم ہے, خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھو. بچوں کو بولو آپ کا بچہ آپ کی بیٹی کھڑے رہ کے اگر بولی سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, میں یہ کہتا کہ میں تو گناہگار ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے چہرہ مولا حسین کو دکھا سکوں, میں گناہگار ہوں, اللہ مجھے معاف کر. لیکن معصوم بچے, معصوم بچے ہیں. اگر تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی تمہارے گھر سے کھڑے رہ کر قبلہ روح کھڑے رہ کے, یہ ماں کی ذمہ داری محرم ہے, کھڑے رہ کے اگر بولی سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اب آپ مجھے بتائیے لندن میں جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں, کوئی آتا ہے آپ کے گھر پہ یا کہیں آپ جاتے ہیں, آپ نے جا کے اگر آپ کا بچہ جا کے جو ہوسٹ ہے آپ ان کو سلام کرتا ہے تو وہ کیا کرتے؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر جواب دیتے. کوئی ایسا نہیں کرتا کہ آپ نے کہا سلام علیکہ, وہ ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا, ایسا نہیں کرتا. وہ آپ کو دیکھتا ہے اینڈ ہی گیوز اسمائل, مسکراتا ہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں, آپ سوچو, جسٹ تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ. اگر بیٹا کھڑے رہ کے بولے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, گھر کے اندر آپ کے مولا حسین کی نگاہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے بیٹے کے چہرے پہ پڑے گی, आपके घर पर पड़ेगी कि इस घर से इस बच्चे ने मुझे सलाम किया, और इमाम अलैका सलाम कहेंगे, देख के मौला हुसैन मुस्कुराएंगे। अगर तुम्हारे घर के ऊपर हुसैन इब्ने अली की निगाह पड़ जाए तो तुम्हारा घर जन्नत हो जाए, सारे तुम्हारे इश्यूज दूर हो जाए। मैं बोलता ना कि दुनिया में कोई ऐसा इश्यू नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, हसबन अल्लाह नेमल वकील, हसबन अल्लाह नेमल वकील, अल्लाह हमारा कफील है, अल्लाह हमारा वकील है। तो अगर आपने सलाम किया, मौला हुसैन ने आपको देखा, देख के अलैका सलाम बोला, बच्चे की भी जिंदगी बदल जाएगी, वो भी हेल्थी रहेगा, आपके घर पे भी बरकत आ जाएगी। और अगर सब मिल के पढ़े, हस्बैंड वाइफ बच्चे, अच्छा अगर बच्चा आपका बड़ा नहीं है, वो नहीं बोल सकता, छोटा है, तो माँ क्या करे, अपने छोटे बच्चे को, इन्फेंट को गोद में ले ले, गोद में ले ले, क़िबले की तरफ देखे और बोले सलाम अलैका या बाप दिलाल हुसैन। आप सोचो मौला हुसैन तुमको तुम्हारे बच्चों की तरफ निगाह डालेंगे तो तुम्हारा बच्चा इस सलाम से बढ़ेगा, फिर तुम्हारे बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो आज बेइंतहा प्रॉब्लम्स है हमारी कम्युनिटी में औलाद के। ये औलाद अगर इस सलाम से आगे बढ़े, इस सलाम से उनकी जिंदगी बढ़े, तो अब आप देखो कि कितना फायदा है। और मुहर्रम ये चीजों के लिए है। मैं हमेशा बोलता हूं मुहर्रम कि जस्ट ट्राई टू गेट क्लोज टू इमाम हुसैन, कल मैंने बोला था ये बात, करीब हो जाओ। तो आसान तरीन तरीका मौला हुसैन से कॉन्टेक्ट में आने का, सलाम करो एक ही सलाम। और छठे इमाम शाह फरमाते हैं कि इमाम हुसैन को सलाम करो, गौर से सुनो, ये मेरे जुमले नहीं है, मेरे मौला के जुमले। मौला कहते हैं कि जब तुम इमाम हुसैन को सलाम करते हो तो अल्लाह तुमको एक हज और एक उमरे का सवाब देता है। आप सोचो सोचो तुम्हारे अकाउंट में इतने हज और इतने उमरे आ गए, आप क्या समझ, आज आपको एहसास नहीं, आज हमको कोई फीलिंग्स नहीं कि इतने आने से क्या फायदा, इतने आने से हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, योर लाइफ विल चेंज। आज पता नहीं चलेगा, जब तुम्हारी आंख बंद होगी तो उस वक्त एहसास होगा, उस वक्त एहसास होगा कि इतने हज मौला हुसैन की जियारत से हमको मिलेगा, इतने हज मौला हुसैन की जियारत से, तो तुम्हारा अमालनामा ऐसा हो जाएगा। दोस्तों एक एक नेकी के बदले में, एक एक सिंगल नेकी के बदले में इंसान परेशान रहेगा वक्त कि कहीं से कोई नेकी आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए। जैसा लहद में आपको लिटाते हैं, हम जाते हैं लहद में अल्लाह ईमान के साथ गए, और लहद बंद होने के बाद उस अंधेरे में कुछ नहीं रहता हमारे पास, हमारा अमालनामा खुलता है, तो अमालनामे में पता ही नहीं कि कितनी नेकियां जो हमने दिल से की वो है या लोगों को बताने की वो है, और खुला और फिर हमारा ऊपर वो तकलीफ शुरू हो गई। तो उस वक्त इंसान ये एक्सपेक्ट करता, ये सोचता, ये दुआ करता, दिल में वहां पे कहता अल्लाह कहीं से कोई नेकी आ जाए, थोड़ी सी रोशनी आ जाए, और हुसैन इब्न अली की जियारत की रोशनी अगर तुम्हारी लहर में पहुंचे तो तुम्हारी ग्रेव एकदम ब्राइट हो जाएगी। उस वक्त एहसास होगा कि आप बीरामी ने क्या कहा था तुमसे, कि सलाम कंटिन्यूस करते रहो, सलाम मुसलसल करते रहो। मुहर्रम में गाड़ी में बैठ रहे, उतर रहे, चल रहे, फिर रहे, जब याद आ रहा बोले सलाम अलैका या बाप दिलाल हुसैन, सलाम अलैका या बाप दिलाल हुसैन। आप समझ ही नहीं पाते कि सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है। और मौला हुसैन अगर जवाब दे दे, हो सकता मौला हुसैन की आवाज तुम्हारे कानों में आ जाए, अल्लाह हू अकबर, हम उस काबिल बन जाए, हमारे कान उस काबिल बन जाए कि हम मौला हुसैन की आवाज सुन सकें। दोस्तों ये आसान बात नहीं है, कानों को से गीबतों को हटाओ, म्यूजिक को हटाओ, कानों में गीबतों की आवाजें ना जाएं, म्यूजिक की आवाजें ना जाएं, कानों से कोई ऐसा गुनाह ना करो कि जिससे कानों के ये पर्दे और मजबूत हो जाए। ऐसे अमाल करते जाओ, ऐसी कोशिश करते जाओ कि ये पर्दे हट जाए और हम अपने मजलूम इमाम की आवाज सुन सकें। वो खुशनसीब इंसान है, इज द लकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, अगर उसने मौला हुसैन की आवाज़ को सुन लिया। और आप सब जानते हैं कि हुसैन करीम इब्ने करीम है, हुसैन के करम का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वैसे हर इमाम हमारा करीम है, लेकिन मौला हुसैन है। तो वो अगर तुमको सलाम का जवाब दे दे और तुम सुन लो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے، کہ حسین آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی ہم بھی اسی کے ساتھ جنگ کریں، ہماری جنگ بھی اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی. ول متر الموتور، ول متر الموتور، کہ حسین آپ کی، یہ مصائب کے جملے ہیں، اے حسین آپ کی لاش کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا گیا. دوستو سار اللہ وابن سارے، کہ جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا، جنگ کی، ہم بھی کریں گے. آج کی جنگ، آج کا جہاد تلوار اور تیر سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لندن کے راستوں پہ نکل جاؤ، گن پوائنٹ پہ کسی سے جنگ کرو. نو، آپ کو جنگ کرنا تلوار اور تیر سے نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے کردار سے جنگ کرنا، اپنے علم سے جنگ کرنا ہے، اپنے اخلاق سے جنگ کرنا ہے، اپنے بیہیویئر سے جنگ کرنا ہے، اپنی بات چیت سے جنگ کرنا ہے، اپنے رہن سہن سے جنگ کرنا ہے. کہ اب وہ چیزیں چیک کرو یہ محرم ہے، کہ میں یہ چیزیں چھوڑا. کیا چھوڑا؟ آج کے بعد سے پھر میں کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کروں گا. اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر اگر جو اب تک کیا ہے. اس لیے کہ یہ بدترین گناہوں میں سے گناہ، کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مس بیہیو کرتے، کسی کو ہرٹ. دیکھیے میں ایک بات بولوں آپ کو، پیسے والوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، غریب کے ساتھ کرتا. اگر آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی دولت مند ہے، پیسے والا ہے، آپ اس کے ساتھ غصے میں بات کریں گے؟ کبھی نہیں کریں، کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ کا اسٹیٹس کم ہے، اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے. آپ کو خوف ہے، آپ کو ڈر ہے، آپ کبھی اس کے ساتھ مس بیہیو کس کے ساتھ کرتے؟ تم غریب کے ساتھ. اور غریب ایک مظلوم ہوتا، وہ مجبور ہوتا، وہ ہیلپ لیس ہوتا. اس کیوں ہوتا ہیلپ لیس؟ وہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا. اگر تم نے ڈانٹ بھی دیا، تم نے غصہ، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اسی لیے کہا مولا نے دعا کمیل میں کہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے. آپ بغیر علم کے میں نے ڈانٹ دیا، مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کتنوں کو ڈانٹا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے یاد ہی نہیں ہے. اور میں مسلسل صبح سے شام تک کسی نہ کسی کو غصے میں میں نے کچھ بول دیا، میں نے سوری بولا. روزانہ ایوری ڈے محرم میں یہ چیک کرو یہ گناہوں کو، اس لیے کہ ہم کو عاشورے تک اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے آپ سے سارے ان گناہوں کو معاف کروانا ہے. اس لیے کہ پھر چانس نہیں ہے. اس وقت امام حسین تمہارے ساتھ، مولا حسین تمہارے گھر میں، کربلا والے تمہارے گھر میں، تو تم کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ اس سال میں 9 محرم سے پہلے اپنے آپ کو بالکل پاک اور پاکیزہ کر لوں، اپنے سارے گناہوں کو معاف کر لوں. اس لیے کہ دوستو ایزی مت لو، گناہ معاف نہیں ہوں گے تو رحمت خدا نہیں آئے گی، گناہ معاف نہیں ہوں گے تو مولا حسین تم سے قریب کیسے ہوں گے؟ اور حسین سے بڑا کون ہے معاف کرنے والا؟ گناہوں کو معاف کرنے والا مولا حسین سے بڑا کون؟ اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ؟ اس سے بڑا کوئی ایسا واسطہ ہے کہ اگر حسین ابن علی کا کوئی واسطہ دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تو گناہ معاف نہیں ہوں؟ حسین ابن علی کے کرم کا کیا انداز ہے؟ آپ سوچو کہ گناہگار ہے اور معاف کر دے. مولا حسین کا شعار، مولا حسین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ معاف کرتے تھے. آپ کے سامنے 1000 واقعات، مشہور ترین واقعہ عاشورے کے دن کا، عاشورے کے دن کا سب سے بڑا مشہور واقعہ، کہ ایک ایسا گناہگار زمین پہ کہ جس سے بڑا کوئی گناہگار تھا ہی نہیں، جس سے بڑا کوئی گناہگار تھا ہی نہیں، حر کہ جو گناہوں میں ڈوب کے 9 محرم تک یزید کے لشکر میں ہے، 9 محرم تک یزید کے لشکر میں، اور ادھر چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، رسول کا گھرانہ پیاسا ہے، رسول کا نواسا، رسول کے نواسیاں پیاسی ہیں، اور ادھر یہ عمر صاحب کے لشکر میں موجود ہے. لیکن اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی وہ جب آیا، سب سے بڑی چیز، واقعہ تو سب کو معلوم ہے، جو سب سے بڑی چیز سیکھنا ہے جناب حر کے واقعے میں، معافی کیسا ملتی ہے، معافی کیسا ملتی ہے. کہ حر آیا تو اس کو احساس گناہ تھا، ہی نوز کہ میں گناہ گار ہوں. یہ چیز کو پیدا کرو محرم، یہ چیز کو پیدا کرو. اس لیے کہ ہم کو گناہ کرنے کے بعد ہم کو احساس نہیں ہے، ہم کو فیلنگس نہیں آتے کہ یس آئی ڈیڈ اٹ، मैंने गुनाह किया, वो फीलिंग्स को पैदा करो, वो मोमिन की अलामत है। इसीलिए मेरे जुमले नहीं है, मेरे जुमले नहीं है, मासूम के जुमले है कि जब भी कोई नेकी करो भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट, और जो भी गुनाह तुमने किए हैं उसको याद रखो। क्यों याद रखो? नेकी अगर याद रहेगी तो तुम माफी नहीं मांगोगे, गुनाह याद रहेंगे तो माफी मांगोगे। तो हर गुनाह को याद रखो, और शैतान जो सबसे बड़ा काम करता है वो गुनाहों को तुम्हारे जहन से निकाल देता, तुम्हारे जहन में लाता ही नहीं कि तुमने गुनाह किया। तुम्हारे जहन में सिर्फ ये डालता कि देखो तुमने ये नेकी की, ये नेकी की, इतना डोनेशन दिया, इतने हेल्प की, ये जहन में, ये भूल जाओ। हर नेकी के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो, जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि यू हैव गिवन मी चांस, तूने मुझे मौका दिया। इवन मैं आपको बताऊं कि तुम्हारे घर में तुमने किसी को खाना खिलाया, कोई तुम्हारे घर में आया खाना खाने, खाना खा के वो चला गया, शुक्र अदा करो। प्लीज गौर से सुनो, शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तूने आज इसके रिस्क को मेरे पास रखा था, तूने मुझे इस काबिल समझा था कि मैं इसको खाना खिला। हम बंदों को खिला सकते किसी, हम किसी को खिला सकते? हमारी हैसियत क्या है हम किसी को खाना खिला, हमारी हैसियत क्या है हम किसी को खाना खिला? ये तो उसका करम कि उसने मुझे अमीन बनाया, उसने मुझे अमीन बनाया और इस बंदे खुदा के रिस्क को मेरे पास रखा और मुझसे कहा कि तू अपने रिस्क में से। क्यों? ये एहसास होना कि अगर रिस्क मैं किसी को दे रहा, रोटी किसी को दे रहा, उसके बाद आप शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो, फौरन शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया, तूने मुझे चांस दिया, तूने मुझे, लाखों लोग, करोड़ों, मिलियंस की तादाद में लोग, अल्लाह किसी को भी मौका दे सकता लेकिन अल्लाह ने तुमको मौका कि तुम्हारे रिस्क में कोई खा रहा, ये शुक्र अदा करो। जब तक ये अदा नहीं करोगे तुमको एहसास नहीं होगा। उसके बाद ये हुर को मौला हुसैन ने माफ किया। क्यों माफ किया? उसको एहसास गुनाह था, ये याद रखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट था हुर के वाकये में, ये सबसे बड़ा पॉइंट कि एहसास गुनाह था, उसको पता था कि मैंने गुनाह किया है, मैंने जुल्म किया है, मैंने जुल्म किया है, उसको एहसास था। ये एहसास अगर हमारे पास पैदा हो जाए तो फिर आप हर गुनाह से महफूज हो जाएंगे, फिर आप इमाम हुसैन से खरीब हो जाएंगे, फिर आपके डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे अगर तुमको एहसास गुनाह हो जाए। ये एहसास गुनाह अफजल तरीन इबादत है। मासूम कहते हैं कि अल्लाह ये कहता कि मैं वो, मुझे वो बंदा बहुत पसंद है जो गुनाह नहीं करता, मुझे वो बंदा भी बहुत पसंद है जो गुनाह करके माफी मांग लेता, इसलिए कि वो तवाब रहीम है, वो तवाब रहीम है। एहसास, एहसास होना, फीलिंग्स पैदा होना, जब तक फीलिंग्स पैदा नहीं हुई यू कांट डू एनीथिंग, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते, आप गुनाहों में पड़ते जाते। हर वक्त सुबह उठ के दुआ करो कि अल्लाह आज का दिन तेरी दात में गुजरे, मैं तेरा ओबीडियंट बन के रहो, और ये दुआ करो मुहर्रम में कि मौला हुसैन मैं आपका इताअत गुजार रहा हूं, मौला हुसैन मैं आजादारी वैसे करूं जैसे आप चाहते, मौला हुसैन मेरी आजादारी को कबूल कर। हर मजलिस के बाद प्लीज गौर से सुनो, हर मजलिस के बाद ये दुआ करना कि अल्लाह आज की बीवी, आज की ये मजलिस को कबूल कर। पता नहीं कितने रियाकारी थी इसमें, लेकिन तुमने भीख मांगा, हाथों को जोड़ के कहा कि बीबी मेरी ये मजलिस कबूल कर। आप बोल रहे अरे एक मजलिस, मैंने तो हजारों मजलिसें करता हूं, मैं तो सुबह से शाम तक इतने करता हूं। ये निकालो जहन से, ये निकालो जहन से, रिमूव दिस के मैं तो इतने ही करता हूं मजलिस, मेरी मजलिस से तो बीबी कबूल कर 100% करेंगी, वो करीम इब्ने करीम की बेटी है, खुद करीमान, लेकिन आपको दुआ नहीं करना, आपको बोलना नहीं, आपको ये एहसास नहीं होना, ग्रांटेड लेना है, ग्रांटेड कभी मत लो, किसी चीज को ग्रांटेड मत लो, ना किसी नेकी को ना किसी गुनाह को। बास वक्त छोटे से छोटा गुनाह जिसको हम गुनाह ही नहीं समझे वो तुमको फंसा देगा, तुम फंस जाओ उस गुनाह में कि ये क्यों किया। कितने कितने वाकयात मिलेंगे आपको, नजफ अशरफ का मशहूर तरीन वाकया, मशहूर तरीन वाकया, पुराना जमाना मौला के रोजे का, अल्लाह हमको ज्यादा नसीब करो, मौला मुश्किल मासूमीन मौला हुसैन, वहां पे एक तालिबे इल्म एक तालिब एक स्टूडेंट वहां था माशाल्लाह बड़े मदरसे वहां से बड़े बड़े मुश्तहिदीन बाहर है। एक तालिब मशहूर तरीन वाकया, एक तालिब घर में खाना खा के, पुराना जमाना कोई कार्स या बाइक्स नहीं थी, जितना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो ऊंटों पे या खच्चर के ऊपर इन चीजों पे होता था। तो वो अपने घर से मौला के रोजे नजफ मौला के शहर में अपने घर से खाना वाना खा के लंच के बाद बाहर निकला किसी काम से, तालिब इल्म है वहां का तालिब इल्म, और कोई टार रोड या सीमेंट रोड्स नहीं होते थे उस जमाने, कच्ची सड़कें रास्ते बने हुए। एक शख्स एक मुसलमान अपने खच्चर के ऊपर, खच्चर जो छोटा होता है उसके ऊपर घास ड्राई ग्रास येलो जो ड्राई ग्रास होती वो डाल के लेके जा रहा था। ये रोड क्रॉस कर रहे थे, वो सड़क मतलब रास्ता क्रॉस कर रहे थे, सामने से वो जाने लगा और इन्होंने अभी खाना खाया था। इन्होंने एक काड़ी, एक ड्राई ग्रास की एक काड़ी खींच लिया है टूथपिक के लिए, वो टूथपिक करते हुए चले गए और फेंक दिए, चले फेंक दिए। दिन गुजरे, जमाना गुजरा, इनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद लहद में ये फंस गए, सारे अमाल तो कबूल हो गए, इस गुनाह में आके फंस गए कि एक मुसलमान के माल को बगैर इजाजत के तुमने लिया कर सकता। इनको याद भी नहीं था, भूल गए थे, तालिबे इल्म है, याद रहता तो माफी मांग लेते, कभी लेते नहीं, एहसास नहीं था, भूल गए। तो इस मामले में फंसे कि तुमने एक बाली काड़ी बगैर माल मुसलमान के माल के बगैर इजाजत के ली कैसे, आप देख रहे इस तरह फंसोगे, हमने तो बड़े बड़े खेत खा लिए, उसने तो काड़ी ली थी, हमारा क्या होने वाला है, हमने तो हजारों डॉलर हजारों दीनार लोगों के खा लिए, वापस भी नहीं किए। कल ही एक जगह रिजी कॉलेज बॉम्बे में मेरे अशर चल रहे, तो मैं हम बैठे हुए थे कुछ डॉक्टर्स थे मोमिनीन के साथ, तो ऐसी बात हो रही थी, दो शब्द मैंने कहा क्या माल किसी का लेना, मैंने कहा कि एक दिन के लिए भी एक घंटे के लिए भी अगर तुमने किसी के माल को लिया, तुमने किसी के माल को लिया, मिसाल के तौर पर तुमने लंदन में 100 पाउंड लिए और कहा कि मैं दे दूंगा अब किसी को मालूम नहीं, तुमको मालूम, तुम्हारे खुदा को मालूम, तुमने किसी से लिए बौरों की, तुम्हारे पास है, फिर बोलो तुम्हारे पास है 100 पाउंड, तुम्हारा फर्ज है कि अगर डेट आ गई तो तुम दे दो, नहीं है तो ठीक है माफी चाहो और यह लिख दो कि आज नहीं कल नहीं परसों दे दूंगा। अगर तुमने माल ले लिया और तुमने वापस ही नहीं किया, हाँ ठीक है देंगे या कल देंगे या परसों देंगे, तो क्या होने वाला है, क्या इतना यकीन है कि 2 दिन तुम जिंदा रहोगे, मर गए किसी को नहीं मालूम है, बेटों को ना बेटी को ना बीवी को किसी को, कि तुमको देना है उसका माल, कि तुम्हारे दरके में से वो दे, इसीलिए वसीयत रखी गई, दे तुमने बताया ही नहीं और तुम उसके माल को खा लिए, खाने के बाद अब तुम जवाब नहीं दोगे, एहसास है गुनाह, वो खौफ वो डर। दोस्तों आज एक और एक चीज दे रहा कि रोज दुआ करो अल्लाह की बारगाह में मौला हुसैन का वास्ता देके कि अल्लाह तेरा खौफ और डर मेरे दिल में पैदा कर दे, मेरे दिल में तेरा डर और खौफ पैदा कर, तू तवाब रहीम है, तू करीम है, तू मेरे दिल में तेरा डर और खौफ, तो फिर मैं गुनाह समझ जाऊं। तो एहसास है गुना हुर के वाक़े में, ये वाक़या कल तक चलेगा, कल तक चलेगा, ये हुर के वाक़े में सबसे बड़ा मैसेज ये कि हुर को एक रात पहले एहसास हो गया था, फीलिंग्स पैदा हो गई थी, उस वक्त तक फीलिंग्स नहीं थी जब उसने मौला हुसैन की लजाम पे हाथ डाला, वो फीलिंग्स नहीं थी जो 9 मुहर्रम को, एहसास अगर हो जाए किसी चीज में, ये तो हुर का वाक्य है, इससे मैं फायदा उठा रहा, अगर मेरे गुनाह का मुझे एहसास हो जाए तो आई नॉट रिपीट दिस, और अगर डर है दिल में, खौफ है दिल में अल्लाह का, तो मैं कभी नहीं करता। तो ये भी दुआ करो कि अल्लाह मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में तेरा डर और खौफ पैदा कर दे, तू करीम है, तू करीम है, तू करीम है, तू करीम है। जब ये होता है ना दोस्तों, तो फिर इंसान जो है کلین ہونا شروع ہوتا ہے، انسان گناہ سے بچنا شروع ہوتا ہے۔ مولا حسین کا مہینہ ہے، حسین ابن علی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ کی بات کوئی واسطہ نہیں، حسین ابن علی کا واسطہ، حسین ابن علی کا واسطہ۔ اس جیسا میں کہہ رہا کہ یہ 9-10 دن کے اندر میرے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک میں بالکل صاف ہو جاؤں، جب صاف ہو جاؤ گے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے بعد احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ایک عالم دین نے کہا کہ مولانا افضل ترین عبادت عبادتوں میں، افضل ترین عبادتوں میں استغفار سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور صرف معصومین نے کہا نہیں کہ استغفار کرو، صرف معصومین نے یہ بولا نہیں کہ تم استغفار کرو ہم نہیں کریں گے، معصومین جبکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، نہ امام، کسی امام کو ضرورت نہیں استغفار کرنے کی، اس لیے کہ گناہ کا تصور ان کی طرف لے کے ہی نہیں جا سکتے۔ آئے تطہیر کا حصار ہے، کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا، بولنے والا گناہگار ہے۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ خدا نہ خواستہ معصومین سے کوئی گناہ ہے ہوا تو وہ گناہگار ہے، معصومین سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ پاک اور پاکیزہ اللہ کے بندے ہیں، اور آئے تطہیر کے مصداق ہے، اللہ نے حصار باندھ دیا۔ تو لیکن اس کے باوجود معصومین نے صرف کہا نہیں، بولا نہیں، بتایا نہیں کہ تم استغفار کرو، بلکہ معصومین نے کر کے بتایا، جبکہ دے ڈونٹ نیڈ اٹ، ان کی طرف تصور نہیں کر سکتے آپ کے خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کہ کوئی گناہ ان سے ہوا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد مولا حسین کی دعا آپ نے ابھی عرفے میں پڑھی ہوگی، ایک مہینہ بھی نہیں ہوا، کیسے تڑپ کے میرا مولا حسین استغفار کر، میں آج دعا کے بارے میں نہیں بولوں گا، کل پرسوں میں ہو سکتا ہوں، کیسے تڑپ کے دعا مانگ معافی کے ساتھ۔ عجیب جملہ ہے میرے مولا حسین کا کہ اللہ سے ایسے مانگو کہ جیسے تم غلام ہو اور وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا آقا ہے، اس طرح دعا مانگو، پھر دیکھو کہ امام دیتا کیا ہے، اللہ دیتا ہے، میں کچھ نہیں کر رہا، I'm not doing anything، لیکن اس کے باوجود میرے کریم پروردگار کا مکمل کرم ہمارے اوپر، مکمل کرم ہمارے اوپر ہے، کچھ نہیں کرنے کے بعد بھی وہ تواب و رحیم، وہ غفور و رحیم، وہ ارحم و رحیمین، مکمل طریقے سے کرم کرم ہے۔ تو پہلی چیز محرم میں اپنے گناہوں کے احساس کو مانو، فیلنگز پیدا کرو، احساس کرو کہ یس میں بہت بڑا گناہ گار، اس سے اچھا میں بولتا کوئی موقع آنے والا نہیں، اب اس سے اچھا کوئی موقع آنے والا نہیں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا۔ آپ بولیں گے یار اتنے گناہ تو میں نے کیے، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ سوچنا گناہ ہے۔ آپ بولیں گے آپ اتنا بول رہے گناہ کہ میں نے کیے کیا، یہ جو ذہن میں آ رہا نا، واٹ ڈیڈ آئی ڈو، یہ جو ذہن میں آ رہا نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ میں نے کیا کیا۔ ارے معصومین نہیں بولتے یہ بات، کسی نبی نے نہیں بولا، پورے ہمارے معصومین اہل بیت نبوہ مادر رسالہ کبھی نہیں بولے کہ ہم نے کیا کیا، بھائی شبی سے سوری۔ اور آج بندہ ان کا ماننے والا، ان کا کلمہ پڑھنے والا بول رہا کہ مولانا میں نے کیا کیا، جو اتنے آپ بول رہے ہیں اتنے گناہوں کو معاف کروا دو، معاف کروا دو، 24/7 تمہاری زبان پہ ایک جملہ تو رہنا، اگر تم زبان سے نہیں بول رہے تو دل میں، دل میں یہ فیلنگز پر، میں صرف فیلنگز کی بات، خود کو جو ملا تھا اس کو احساس ہوا، وہ پوری رات، اس کا جملہ ہے کہ پوری رات شب عاشور وہ کہتا ہے کہ میں جہنم اور جنت کے درمیان ٹہل رہا تھا کہ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کی آگ میں چلا جاؤں گا، اور حسین کا ساتھ دوں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو سب سے بڑا اس کا گناہ تھا، جو اس کو بھی احساس تھا کہ جس نے، جس کی وجہ سے مولا حسین کربلا آئے، گھیر کے لایا تھا مولا حسین کو، اور گستاخی کی تھی، اپنا ہاتھ لجام فرس پہ ڈال دیا تھا، اور ڈال کے کہا تھا کہ فرزند رسول میں آپ کا راستہ روک دوں گا، آپ کو جانے نہیں دوں گا، اب آپ میرے ساتھ چلیں راستے میں۔ جب یہ کہا तो हुसैन जानते थे कि इसके शऊर को, इसके कॉन्शियस को हिलाना कैसे, हुसैन जानते। जब उसने डाल के ये जुमला कहा, हुसैन ने कहा, हर तेरी मां तेरे गम में रोए, ये रब का दस्तूर था, क्या तू मर, मतलब यह कि तू मर तेरी मां रोए, तेरी मां तेरे गम में रोए, बस ये कहना। हुर को कोई बोले, हुर सरदार है अपने लश्कर का, अरब का बहादुर इंसान है, हुर को कोई बोले, उसने हाथ को हटाया। अब हुर का जुमला सुनना कि मौला हुसैन ने यह जुमला क्यों बोला। हुर ने सर को झुका के कहा मौला हुसैन के सामने कि फर्जंदे रसूल, आज अरब की जमीन पर किसी मां का कोई बेटा ऐसा नहीं है जो मुझसे इस तरह बात करे। बहादुर है, कितना फखर है। कहा आज अरब की जमीन पर किसी मां का कोई बेटा ऐसा नहीं जो मुझसे ऐसे बात करे। फिर हाथों को हटा के कहा, अब जुमला सुनो सदखे हुर के, हाथों को हटा के कहा, लेकिन फर्जंदे रसूल, आपकी मां का मकाम इतना बड़ा है कि मैं आपकी मां का नाम, आपकी मां का मजलूम मां का नाम आसमानों के नीचे भी नहीं लेता। बीबी का कैसा एहतराम किया, आपकी मां का नाम मैं आसमानों के नीचे भी नहीं ले सकता, इन्हें हिजाबात में लेता। इसीलिए हुसैन ने हुर को वो ऑनर किया था, हुर को वो मकाम दिया था कि बीबी का एहतराम किया, मेरी मजलूम शहजादी का एहतराम किया था। तो हुसैन ने वो मकाम दिया, वो स्टेटस दिया कि हुर को जो स्टेटस मिला वो ना हबीब को मिला, ना जोहर को मिला, ना मुस्लिम को मिला, किसी को नहीं मिला जो मौला हुसैन के करीब थे, ना हबीब ना जोहर ना किसी को नहीं मिला, ना मुस्लिम, सब अपने मकाम पे सही। हुर को हुसैन ने वो एहतराम की वजह से वो स्टेटस दिया कि जब घोड़े से जख्मी होके जमीन पर आया तो हुसैन ने उसके सर पर रुमाल फातिमा बांध दिया, ये कह के कि तूने मेरी मां का एहतराम किया। अजीजो, हुर वो बादशाह है, वो किंग है जिसके सर पर ये ताज मौजूद है, ये क्राउन मौजूद, सारे दुनिया के ताज एक तरफ, रुमाल फातिमा एक तरफ, के रोजे मैशर हुर की बख्शिश का सहारा रुमाल फातिमा है। बस महदूद वक्त की मजलिस है और मैंने जैसे कहा कि ये चलेगा, जनाब हुर का वाकया कल भी आएगा दूसरी तरीके से। आज एहसास पे मैंने बात की कि एहसास था हुर को, एहसास हुआ था, अल्लाह की मदद हुई थी कि ही स्टार्टेड फीलिंग कि मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, मैंने हराम किया। उसको जब बच्चों की अलतश की आवाजें सुनता था तड़पता था कि ये आप, ये प्यास, ये बच्चों की प्यास मेरी तरफ से, मैं अगर मौला हुसैन को यहाँ घेर के नहीं लाता, वो मसले सब अलग है, लेकिन हुर को एहसास था कि ये गुनाह मैंने किया है, मेरी तरफ से हुआ। तो आज हुसैन और हुसैन के बच्चे ये मुसीबत में नहीं आते, ये आज एहसास में बात है, ये एहसास में बात पूरे 9 दिन हो सकते, लेकिन कल दूसरी जो उसकी फीलिंग थी उस पर भी बात होगी। बस दोस्तों, वक्त हो गया, मौला आपको आबाद रखे। जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस को में ताउन किया है अहले बैत चैनल के साथ, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी यह मजलिस कबूल हो जाए बीबी की बातें, और इस मजलिस हुसैन का उनको अजर अजीम अता करें जिन्होंने ताउन किया। सारे मरहूमीन की मगफरत और मेरे इमाम की सलामती के लिए और शियत की सलामती के लिए, बीमारों की शिफा के लिए एक बावाज़ बलंद सलाम पड़े। इस पर बस, आचार मुहर्रम है, शबे पांच मुहर्रम आ गई, कितनी जल्दी ये वक्त गुजर गया, देखते ही देखते मुहर्रम के चार दिन हो गए। अजीजों अब कितने दिन बाकी रह गए? और पांच दिन नौ मुहर्रम आ जाएगी, फिर वो कयामत का दिन आ जाएगा कि जिस दिन मजलूम बीबी जहरा का घर उजड़ जाए, और ऐसा उजड़ा कि अब कयामत तक फातिमा का घर कभी आबाद नहीं होगा। बीबी आज उस मजलूम बीबी के घर के उजड़ने के बाद जो हालात हुए वो आप सब जानते हैं कि जालिमों ने सिर्फ हुसैन को शहीद नहीं किया, बल्कि हुसैन के बाद हुसैन के छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया। मैं कितनी आराम से, कितनी आसानी से बोल रहा कि छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। जालिमों ने छः महीने के अली अजहर को भी नहीं छोड़ा, बीबी सकीना को भी नहीं छोड़ा। आपको मालूम कि रबाब वो मजलूम बीबी है जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, जिसकी गोदी शाम में भी उजड़ी। वो मजलूम बीबी, इतना बड़ा वास्ता है शहजादी का। जब शहजादी अली असगर के मसाइल पढ़ूंगा इंशाल्लाह उस वक्त बताऊंगा कि बीबी रबाब का क्या मकाम है, कितना बड़ा वास्ता है, दुआओं की कबूलियत के लिए कितना बड़ा सहारा है अल्लाह की बारगाह में कि ये वो माँ है कि जिसका अजीब जज्बा था कि जिसने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, कभी ये नहीं कहा कि हाय मेरी गोदी ऐसे उजड़ गई, ना अली असगर रहा ना सकीना रहा, सिर्फ शिकवा मौला हुसैन से किया। शिकवा भी क्या किया, खबर हुसैन पे अपने रुखसारे को रख के कहा था, शिकवा नहीं था, खबर हुसैन को अपने रुखसारे पे रख के कहा था, रुखसारे को ऐसा रखा और एक अजीब फरियाद की, कहा परवरदिगार मेरा वाली भी गुजर गया, मेरे बच्चे भी गुजर गए। हुसैन से कहा मौला अब मैं वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ा, मेरी गोदी भी उजड़ गई, अब मैं किसके सहारे जाऊं। ये शिकवा नहीं था, ये मौला हुसैन से फरियाद थी बच्चों के लिए। तो जालिमों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और इतने जुल्म के साथ माओं के सामने बच्चों को शहीद कर दिया। अजीजों करबला वो जगह है कि जहाँ माओं के सामने बच्चे शहीद हुए, माएँ तड़पती रहीं बच्चे शहीद होते गए, माएँ तड़पती रहीं गोदियाँ उजड़ती गई, और एक एक शहीद हुआ हर माँ ने अपनी कुर्बानी को देकर, अपने सैक्रिफाइस को देकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया कि परवरदिगार तू मेरी ये कुर्बानी को कबूल कर ले। यहाँ तक कि शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और मोहम्मद की मैयतों के दरमियान शुक्र अदा करके कहा था कि परवरदिगार मेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल कर ले और मेरे भैया को, मेरे माजाए को बचा ले। बीबी फातिमा का घर ऐसे उजड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। आज 1400 साल से शहजादी तड़प तड़प के दुआ कर रही, हर मजलिस में आती हैं, रोने वालों के करीब जाती हैं, जाकर दुआएं देती हैं, उनके आंसुओं को कबूल करती हैं और हाथों को उठा के कहती हैं कि परवरदिगार मेरे बच्चे के पे रोने वालों को सलामत रखना, मेरे बच्चे पे रोने वालों के सलामत रखना। दोस्तों याद रखो, अहले बैत चैनल की मजलिस हो या किसी इमाम बारगाह की मजलिस हो, जहाँ तुम बैठ के गिरिया कर रहे, बीबी की दुआएं तुम्हारे साथ है। मजलिस हुसैन को कभी ईजी मत लो, मजलिस हुसैन हमारी जिंदगी है, हमारी रूह मजलिस हुसैन है, जिक्र हुसैन हमारी रूह है, जिक्र हुसैन हमारी जिंदगी है। अगर ये निकल जाए तो जैसे मछली पानी में से निकाल के बाहर आती, कैसे तड़पती, हम वैसी तड़पेंगे। हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, दुआ यही है कि परवरदिगार जिंदगी की आखिरी सांस तक हम मजलूम हुसैन का जिक्र करते रहें और यही जिक्र करते हुए तेरी बारगाह में आए। आपने सुना कि बीबी का घर एक दोपहर में उजड़ गया, बस एक छोटा सा वाकया और मैं मजलिस को तमाम करूं। कभी आपने सोचा 1400 साल से मेरी बीबी मुसलसल गिरिया कर रही और अब करती रहेंगी, ता कयामत तक बीबी का मातम है, ता कयामत तक बीबी की गिरिया है। अजीजों कभी आपने ये सोचा कि रोज़े मैशर डे ऑफ जजमेंट जो है वो तो जस्टिस का दिन है और वो तो इतना बड़ा दिन है कि जिस दिन सारी अल्लाह की मखलूक एक जगह जमा होगी, उस दिन सारे अम्नबी भी होंगे, अम्बिया भी होंगे, मासूमीन भी होंगे। तो कभी आपने ये सोचा कि वो दिन कि जो डे ऑफ जजमेंट है, जो इंसाफ का दिन है, उस दिन बीबी मजलूम बीबी जहरा का क्या हाल होगा। रिवायत का अजीब जुमला है, इसी पे मैं मजलिस तमाम कर रहा। रिवायत में है कि जब रोज़े मैशर पूरा मैदान मैशर गर्म हो जाएगा, सारी अल्लाह की मखलूक जमा हो जाएगी, सारे नबियों की उम्मतें खड़ी हुई होंगी, सारे अम्बिया खड़े हुए होंगे, सारे रसूलें खड़े हुए होंगे और 14 मासूमीन होंगे, 13 मासूमीन होंगे। उस मैदान मैशर में एक आवाज़ बुलंद होगी, एक आवाज़ आएगी कि अहले मैशर अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो। पूछा जाएगा क्यों बंद करें, तो आवाज आएगी कि हुसैन की माँ अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने आ रही। वो उस दिन बीबी आएंगी फरियाद करने। तो उलमा से पूछा गया क्या ये हुक्म औरतों के लिए भी होगा, इसलिए कि औरतों को तो मौका है कि अपनी मजलूम शहजादी की ज्यारत करें। तो उस वक्त हमारे उलमा कहते हैं, बस ख़त्म हो गई मजलिस, हमारे उलमा कहते हैं कि उस दिन औरतों को भी हुक्म होगा कि सारी आंखों को बंद कर लो और खामोश खड़े हो जाओ, हुसैन की माँ आ रही है, मेरी मजलूम बीबी जहरा आ रही है। तो पूछा क्यों बंद करें औरतें, तो कहा जिस हालत में खत्म हो गई मजलिस, जिस हालत में फातिमा आएगी उसको कोई देख नहीं सकता। पूछा क्या होगा, तो कहा कि हुसैन का पैराहन होगा, अब्बास के कटे हुए शाने होंगे, अली असगर का जख्मी जिस्म होगा, शहजादे की लाशें को बागोश में लेके अब्बास के कटे हुए शाने होंगे और जिसपे तलवारों के निशान, और हुसैन का वो पैराहन जिसको बीबी ने अपने हाथ से सी के दिया था, जिसके ऊपर तलवारों के निशान हैं, तीरों के निशान हैं, नैजाओं बर्चियों के निशान हैं, जिसके ऊपर पत्थर के निशान हैं। फातिमा उस पैराहन को लेकर अल्लाह की बारगाह में आएगी और कहेगी परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे ज़िबा कर दिए गए, आज फातिमा इंसाफ चाहती है। उस वक्त आवाज आएगी है मेरी करीज़े खान, जो मांगती हो मांग लो, उस वक्त मेरी शहजादी अपने चाहने वालों की, अपने आजादारों की, अपने मातबदारों की बख्शीश करवाएंगी और फरियाद करेंगी, इलाही सैयदी व मौलाया, परवरदिगार मेरी मजलूम बीबी जहरा के मसायत का वास्ता, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी ये मजलिस मेरी मजलूम बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह जो जो बीमार है उनको सेहत कामिला अता फरमा, हमको ताकत दे सादत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मजलूम इमाम का जिक्र करें, और जब भी अपने मजलूम का जिक्र करें उस जिक्र को भी मजलूम बीबी जहरा की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दें। अल्लाह जो जन्नतुल बकी जन्नतुल मोहल्ला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। परवरदिगार जहाँ जहाँ हमारा हुसैन का चाहने वाला है अज़ादारी हो रही, अल्लाह उन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आज जो फर्जंद है मजलूम बीबी जहरा मेरे इमाम ज़माना को, वारिस अज़ा को, मुहाफिज अज़ा को, मुहाफिज हमारी जिंदगियों को सलामत रखना, मेरे इमाम को सलामत रख, आज़ादारी की हिफाजत फरमा। जिन जिन लोगों ने आज मजलिस में ताउन किया उनके मरहूमीन को बख्श दे, उनके रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। अल्लाह तो हमारे माँ बाप पे रहम कर, रब्बे फिली वले वालदैया वले मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। परवरदिगार सारे मरहूमीन को बख्श दे, मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको मरा के नासिरों में इंतज़ार करने वालों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस में ताउन किया उनके सारे मरहूमीन, अपने अपने सारे मरहूमीन, अहले बैत चैनल की एंटायर टीम के सारे मरहूमीन, सैयद बाखर जैदी साहब की वालिदा,